ओम शांति, सुख शांति। सभी सुख शांति में है कि खाली ओम शांति में है? क्या फर्क है दोनों में? ओम शांति और सुख शांति में क्या फर्क है? और सुख शांति शांति में सुख भी समाया हुआ है, तो सभी अच्छी तरह से तपस्या में मगन है। इस जनवरी मास का विशेष रूप से सभी लाभ ले रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है इस मधुबन की धरनी पर तपस्या करने का विशेष चांस मिलता है। यहाँ की तपस्या का बल हमारे जीवन को बहुत शक्तिशाली बनाता है, निर्विघ्न बनाता है। मन में अनेक प्रकार के ब्लॉकेज होते हैं, वो खुल जाते हैं। ये अगर हमारी तपस्या यथार्थ रूप से चलती रहे तो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन है ही विशेष तपस्या के लिए, और तपस्या अनेक प्रकार की है, खाली बैठे बैठे नहीं, सेवा भी एक तपस्या ही है। आज बाबा ने स्लोगन में भी प्रदान स्लोगन में बहुत अच्छी क्या बात थी, बालक से मालिक बनना है, और एक्यूरेट सुनाओ। हाँ जी, बाप दादा को अपना बना लो बालक से मालिक बनकर, तपस्या सैकरीन तो कल खाई थी, वो कल थी सैकरीन, आज तो सैकरीन से आगे की बात होगी। हाँ जी, अभी तक तो कॉपी भी देख ली होती। बालक सो मालिक वो है कौन, जो तपस्या के बल पर भाग्य विधाता को, भाग्य विधाता बाप को अपना बना ले, तो भाग्य विधाता बाप अपना तपस्या के बल पर बनेगा। तो ये ब्राह्मण जीवन जो है विशेष तपस्या से निखारने के लिए है, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन के माध्यम से ही संसार को रोशन कर सकेंगे। जो बाबा कहते हैं अपने चलन और चेहरे से, व्यवहारिकता से दूसरों को अनुभव कराओ, लेकिन दूसरों को अनुभव कराने से पहले स्वयं को अनुभव होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, एक अंदर में गहरी महसूसता होनी चाहिए कि भगवान सचमुच भाग्य विधाता मेरे साथ में है। जैसे गीत तो सुना हम सब ने, ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है, तो वो महसूसता होनी चाहिए कि सचमुच वो हमारे साथ है कि नहीं है। तो उसकी क्या फर्क है अगर वो हमारे साथ है और हम उसकी महसूसता कर रहे हैं, तो क्या निशानी है उसकी, क्या होगा हमारे जीवन में अगर वो हमारे साथ में, तो क्या होगा, निडर रहेंगे और खुशी रहेगी, कितनी खुशी, बेहद अनलिमिटेड अपार अथाह, और क्या निशानियां होगी, सोचने से पहले ही काम हो जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वेरी गुड, सोचने का काम भी वही करेगा, ये भी ठीक है, और खुशनुमा चेहरा, और दैवी गुणों की धारणा अपने आप ही होती रहेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मोहब्बत का जीवन है ये, मेहनत का नहीं है, मेहनत बहुत कर ली, और हाँ जी, हाँ जो कमजोरियां खत्म हो जाएंगी और शक्तिशाली हो जाएंगे, निर्विघ्न हो जाएंगे, और निरंतर आगे बढ़ने के प्रेरणा मिलती रहेंगी, मन बुद्धि को टचिंग होती रहेगी, और देह और देह से परे रहने की आदत, क्योंकि वो विदेही है इसलिए हमको भी वैसी आदत पड़ जाएगी, जैसा जो होता है उसके साथ रहते 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 हमारी आदत भी वैसी ही बन जाती है। कितने पॉइंट निकल रहे हैं देखो, सब अंदर में बांध के रखे हुए हैं सभी ने, तो ये बाहर निकालने चाहिए, है ना। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम यहां आए हो किस लिए, वेरी गुड, सब ठीक ठाक बता रहे हैं। वेरी गुड। तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में घृत डालने के लिए। अब इसी लाइन पर हम चिंतन करेंगे ना। तुम यहाँ आए हो, तुम तो तुम अर्थात हम कौन है? आत्मा डायरेक्ट बोल दिया, और उसके अलावा कितनी लंबी लिस्ट हो सकती है ना। तो हम ये देख रहे हैं इस एक लाइन में कितने सेंटेंस। पहले तुम यहाँ आए हो, यहाँ यहाँ आए हैं तो यहाँ कौन सी जगह पर आए हैं इसके बारे में चिंतन। पहले तुम के बारे में चिंतन, यहाँ आए हो यहाँ कौन सी जगह पर आए हैं उसका चिंतन, किसके पास में आए हैं उसका चिंतन, किस लिए आए हैं उसका चिंतन, क्या करने आए हैं उसका चिंतन। एक ही सेंटेंस में कितना सारा खजाना भरा हुआ है। तो तुम यहाँ आए हो किस लिए, तो तुम अर्थात आत्माएं हैं। हम कौन सी आत्माएं हैं? देवात्माएं, ब्राह्मण देवात्माएं को तो शक्ति भरने की जरूरत नहीं है। भगवान के पास कौन सी आत्माएं जो प्यासी थी, तड़फती थी, भड़कती थी, जिन्होंने खूब भक्ति की है, भगवान को पुकारा है और भगवान के लिए दर दर धक्के खाए हैं, तीर्थ यात्राएं की है, भक्ति पाठ पूजा की है, वो आत्मा यहां पहुंची है, जिन्होंने पुकारा है, दिल से पुकारा, आहार्त पुकार निकली दिल से। कल पहले बिछड़ने वाली आत्माएं ढूंढ ढूंढ के पहुंच गए इधर, और भाग्य हाँ भाग्यवान आत्मा ही यहां पहुंच सकती है। और कौन सी जगह पर आए हो? मधुवन, तपस्या भूमि, भगवान की गोद में। और इस भूमि का क्या और महत्व है? कौन कौन सा महत्व है? तपस्या करने की भूमि, महान तीर्थ है ये, भगवान का अवतरण है, चार धाम है इधर, चारों धाम इधर ही हैं, ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है और वरदान भूमि है, अवतरण भूमि है, रिफ्रेश होने की भूमि है, कल के मुरली में आएगा रिफ्रेश होने की भूमि है, तपस्या भूमि है। इस तपस्या भूमि की मिट्टी का हर कण कण शक्ति से भरा हुआ है, इन दीवारों में शक्ति भरी है, इन चित्रों में शक्ति भरी है, इस हॉल में शक्ति भरी है, चारों धाम में शक्ति भरी हुई है। तो कौन से स्थान पर हम आए हैं, अगर हमको सारा दिन ये भी थोड़ा चिंतन रहे, मन में ध्यान में रहे, तो भी हमारी शक्ति दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती रहे, बढ़ती रहे, स्वतः बढ़ती रहेगी, ऑटोमेटिकली नहीं है ना, स्वतः वरदान मिलेगा। कौन सी आत्माओं को? कल के वरदान में था, कौन सी आत्माओं को स्वतः वरदान मिलता है? वरदान में महावाक्य था, जो आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, सबको संतुष्ट करती हैं, उनको संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः मिल जाता है। तो ये भूमि वरदानी भूमि है, पग पग में वरदान यहां बरस रहे हैं, लेकिन महसूस करने के लिए हमारे बुद्धि रूपी पात्र वैसा चाहिए, स्वच्छता चाहिए, क्योंकि वरदान किससे मिल रहे हैं? स्वयं भगवान से वरदान मिल रहे हैं। भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए हमारा पात्र, हमारी जो अंदर की इंटेंसिटी है, हमारी जो अंदर की स्टेज है, वो भी वैसी चाहिए, मिलने की तड़फ भी वैसी चाहिए। जो बड़ा ऑफिसर होता है उससे अगर हमको मिलना है तो कैसे मिलना होता है? उसके जैसा बिहेवियर चाहिए, हमारा बिहेवियर पैटर्न भी वैसा चाहिए। तो भगवान से हम मिल रहे हैं, उससे अगर हमको प्राप्तियां करनी है तो हमारी व्यवहारिकता भी वैसी चाहिए, हमारा मिलना भी वैसा चाहिए, हमारी सोच भी वैसी चाहिए, तो हम उन वरदानों को पचा पाएंगे। वरदान स्वतः मिलते हैं। किसने वरदान दिए? 18 तारीख की मुरली में था, शाम के टाइम में जो चली, ऑलमाइटी अथॉरिटी, देखो माता ने सब याद रखा है, लग रहा है आपके चेहरे से आप बिल्कुल आप पूरे ऑलमाइटी अथॉरिटी से वरदानों से भरपूर हो। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप ने हमको वरदान दिए। फिर कौन कौन से वरदान दिए? जन्मते ही ब्राह्मण, जन्म लेते ही भगवान ने वरदान दे दिए हमको, मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दे दिया, उसमें सारी शक्तियां समाई हुई हैं। तो उन वरदानों से हमारी पालना हो रही है, और वरदान अगर हमको स्मृति में नहीं रहे तो फिर पालना कैसे हुई, शक्तिशाली कैसे बनेंगे? तो सर्वशक्तिवान बाप से शक्तियां लेने के तरीके हैं, अर्थात स्मृति स्वरूप बनकर रहना। अगर स्मृति नहीं है तो हम बेहोशी की अवस्था में हैं, और जितने भी विकर्म होते हैं वो सारे विस्मृति की अवस्था में ही होते हैं। जब जब हमको स्मृति रहती है तो हमारी अवस्था हाई लेवल पर होती है, और जैसे हम जैसे जैसे विस्मृत हो जाते हैं तो डिप्रेशन में, बेहोशी में, और अंदर में एक खालीपन रहेगा। तो स्मृति और विस्मृति का सारा महत्व है। तो क्या क्या भगवान से हमको मिला है, बाबा ने कहा ना प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, अपने आप बनानी है प्राप्तियों की। एक है बड़ा बड़ा माल मिल जाता है, एक है खुद मेहनत बना के खाना। तो अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनानी कि ब्राह्मण जन्म मिलते ही हमको क्या क्या प्राप्तियां हुई है। अथाह प्राप्तियां हैं, अनलिमिटेड प्राप्तियां हैं। नहीं तो अगर इन प्राप्तियों को हमको स्मृति में नहीं रखेंगे तो जो इच्छाएं हैं शूद्र जीवन की, वो इच्छाएं ऐसे खत्म नहीं होंगी। उन इच्छाओं को समाप्त करने के लिए बेहद के बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को स्मृति में रखने से वो इच्छाओं के दरवाजे बंद होंगे। नहीं तो उधर तो इच्छाएं, ढेर सारी इच्छाएं हैं, एक इच्छा खत्म होगी दूसरी इच्छा 10 इच्छाओं को लेकर आएगी। फिर इच्छाओं में वो तृष्णाएं कम नहीं होती हैं, अंत तक वो तृष्णाएं बनी रहेंगी। इसलिए हमको प्राप्तियों के लिए स्वयं ही तैयार करनी है कि भगवान से हमको क्या क्या मिला है और उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। केवल मिला नहीं है, उससे परिवर्तन किया, हमारे जीवन में उसका क्या प्रयोजन है, उसका हमने क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया। तो सर्वशक्तिमान बाप से शक्तियां लेनी है तो स्मृति में रखना है कौन सी भूमि पर आए हैं, कहां हम बैठे हैं। बाबा ने उसने बताया ना संडे की मूल्य में, अमृत वेले से रात्रि तक, योग निद्रा तक सारी दिनचर्या बनी हुई है। अमृत वेले कैसे मिलते हैं बाप से, बच्चा बनकर मिलते हैं, वरदान देते हैं, और उसके बाद कैसे मिलते हैं, टीचर, कौन सा दिया था हमको टाइटल, तुम कौन हो, अर्थात भगवान के विद्यार्थी, गॉडली स्टूडेंट अंग्रेजी में, और हिंदी में भगवान के विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी जीवन के बारे में सोचना है, विद्यार्थी जीवन कैसे होता है, कैसे रहते हैं विद्यार्थी, एकदम अप टू डेट, सारा लेटेस्ट क्या खबर होती है सब मालूम होता है, है ना, कॉपी पेंसिल हाथ में। कच्छ में कुरम बाबा कहते हैं, अभी तो कच्छ में मोबाइल है, कच्छ अर्थात यहाँ, कुरम अर्थात किताब, है ना। तो अभी तो क्या होता है, मोबाइल होता है, दो दो मोबाइल होते हैं, लेकिन मोबाइल भी रखना है, लेकिन उसको हमें अपनी उन्नति का साधन बनाना है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, खराब नहीं है मोबाइल, लेकिन हम उसे यूज कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाबा ने कहा ना साइंस के साधन किसके लिए है, हम बच्चों के लिए बनाए हुए हैं, हमारी उन्नति के लिए बनाए हुए हैं। वैसे तो इस ज्ञान को भी अगर सही तरीके, भगवान के ज्ञान को भी हम सही तरीके से यूज नहीं करें तो यह भी हमारे लिए घातक ही है। ब्रह्मा भोजन है, नाम ब्रह्मा भोजन है, और खा लिया ढेर सारा तो वो भी उल्टा हो गया, काम की नहीं हो गया। अब है तो मोबाइल ही है, लेकिन हम उसको यूज दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो वो हमारे लिए घातक है। संसार की हर चीज एक्यूरेट बनी है, लेकिन उसको हम यूज कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है, और यूज करने की नॉलेज भगवान ने हम सब बच्चों को दे दी हुई है। तो नॉलेजफुल बाप के बच्चे हैं, मास्टर नॉलेजफुल है। तो हर समय हमको अपने दीपक में ज्ञान में ज्ञान का ग्रित डालते रहना, कुछ ना कुछ ज्ञान का चिंतन चलता रहना चाहिए, नहीं तो खाली बैठे रहेंगे बदलाव नहीं महसूस होगा। पग पग में बदलाव महसूस होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन अर्थात चढ़ती कला जीवन है, उड़ती कला का जीवन है, बाकी तो आगे तो गिरना है, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें हमको हमेशा हर पल, हर सेकंड, हर क्षण में चढ़ती कला की महसूसता होनी चाहिए। ढेर सारी विधियां हैं ज्ञान में, ज्ञान के मूल्यों में, बाबा के महावाक्यों हैं, वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस में कितने सारे अनेक अनुभव मिलते हैं, लेकिन उन अनुभवों को हमें अपना निजी अनुभव बनाना है, व्यक्तिगत अनुभव बनाना है। दूसरा अनुभव करे ना करे, या दूसरों को सुनाए ना सुनाए, लेकिन हमको पहले अपनी अनुभूतियों में खोए हुए रहना है। हमको लिस्ट बनानी है, हमको क्या अनुभव करना है। जैसे बताया तुम यहां आए हो, तो तुम यहां आए हो तो तुम कौन, कौन हूं मैं, एक छोटी पहली पहली है, यही अंत तक रहेगी, इसी को अंत तक सुलझाने में लगे रहेंगे हम। तो हम कौन हैं, हाँ कौन सी आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, संडे को बाबा ने बताया ना संत स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। तो स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की निशानियां क्या है, जो पूरा अपने मन मित कर्मेंद्रियों का पूरा मालिक, राजा। राजा कोई सीट पर बैठे राजा नहीं होता, घर में भी राजा ही होता, तो सोते हुए भी राजा ही है। तो हमारा कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण दिन प्रतिदिन पूरा 100% वो उस अवस्था तक बढ़ते रहना चाहिए। केवल उसको हमको मन में रिपीट नहीं करना, उस पर थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। और पहले स्थूल पर कार्य करना पड़ेगा, फिर सूक्ष्म में जाएगा। पहले स्थूल चीजों में, जैसे घर में, घर में हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे किचन में कर रहे हैं या ऑफिस में कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, 10 मिनट का है तो 10 मिनट हमको वही काम पूरी तन्मयता से करना है। ये नहीं कि बीच में कोई दूसरा काम आगे दो कर लेना। या हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, कोई दूसरा संकल्प नहीं। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपने जीव पर, कर्मेंद्रियों पर भी नियंत्रण। आत्मा आंखें हैं तो आंखों से हमको क्या देखना है, पता है मेरी आंखें चंचल हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमको उस पर थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, देखना पड़ेगा प्रैक्टिस। क्योंकि इन ये आंखें तो जैसे इन आंखों में चमड़ी समा गई है, दूसरों को देखने की आदत बन गई है, लेकिन हम अपनी कमी कमजोरी बताते थोड़ा नहीं किसी को, इससे थोड़ी छूटती है। बड़े लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद सालों साल बीत जाते हैं, ये तपस्या कोई शायद थोड़ी है। इतना ऊंच भगवान पद दे रहा है हमको, विश्व का मालिक बनाने आया हुआ है, तो शायद काम थोड़ा नहीं है। है तो शायद राजयोग, लेकिन प्रैक्ट में कठिनतम राजयोग है ये। तो ये स्वयं की कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए जीवारस है, खाने का है, बहुत कुछ बना हुआ है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, जीव को कंट्रोल करने के लिए कि आज हमको ये चीज नहीं खानी है, और उसी दिन बनी होती है वो, जिस दिन हम प्रतिज्ञा करते हैं, बोलते हैं बाबा का भोग है फिर। तो पहले स्थूल पर काम करना है। मोबाइल है, आज हमको कोई भी मोबाइल का ऐसी वैसी कोई भी चीज देखनी नहीं है उसमें, आज क्या हमेशा के लिए ऐसी चीज देखनी नहीं है कोई भी, केवल हमको व्हाट्सएप पर वही मैसेज देखने जो हमारे काम के हैं, जो नहीं है उनको देखने नहीं है। तो यहां हमारे मन पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण, और वो शक्ति काम करेगी, शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। जब स्थूल में शक्ति बढ़ेगी तो धीरे धीरे सूक्ष्म अपने आप ही बढ़ती जाएगी। पहले स्थूल में काम करना पड़ता है, जैसे पहलवान होते हैं तो पहले तो बॉडी को करते हैं ना, अगर बॉडी कमजोर है, दुबली पतली, तो कैसे करेंगे? उसकी बॉडी शक्तिशाली है तो मन अपने आप ही शक्ति, उसको पता अभी तो मैं पहलवान हूं तो सामने वाले को पटक दूंगा। तो हमारे भी सूक्ष्म जो आदतें हैं, जो मन की जो अवस्था है, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए पहले स्थूल रूप से काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी आदतों पर नियंत्रण, कहीं हम गप मार रहे हैं, गप शप में दो लोग खड़े हैं, बीच में हम भी कूद पड़े, रोकना अपने आप को। क्लास योग का टाइम होता है, बीच में कोई मिल गया तो 10 मिनट हमारे ऐसे चले गए, वो रोकना अपने आप को। और वही थोड़ा थोड़ा टाइम हम बचत करते हैं, वही हमारी शक्ति के रूप में काम करेगा। तो दिन प्रतिदिन हमको अपने आप को शक्तिशाली बनाने का थोड़ा सा टाइम बच गया है, तो टाइम का है हमारे हाथ में, अभी कितना टाइम निकल गया है यज्ञ का, कितना लंबा सफर है बीत चुका है, और फ्यूचर का भरोसा नहीं। बाबा ने कहना अचानक कुछ भी हो सकता है, भरोसा थोड़े नहीं सवेरे उठेंगे नहीं उठेंगे, पता किसी को कोई पता नहीं है, यहां बैठे बैठे को पता थोड़ा नहीं है आगे क्या होने वाला है। तो वर्तमान मोमेंट में हमको ये वर्तमान क्षण सफल करना है। फ्यूचर किसने देखा, कल करेंगे परसों करेंगे, प्लान बनाते बनाते प्लेन ही हो जाएंगे सर प्लान भी। वर्तमान में प्लान, छोटे छोटे प्लान बनाने हैं, उनको वो टारगेट पूरा करना है। तो बाबा से शक्ति लेने के लिए हमको कुछ एक बातों में देखेंगे कैसे बाबा से शक्ति लेनी है, तो 10-12 बातें देखेंगे। सबसे पहले तो शक्ति किससे मिलती है, सबसे ज्यादा शक्तिवान कौन है, शिव बाबा। तो बाबा से शक्ति लेनी है, कैसे लेंगे शक्ति, उसके भी बहुत सारी विधियां हैं, कैसे लेंगे, हाँ जी, सोमान से, हाँ सोमान से लेंगे, और आत्मवाणी बनने से, अनेक विधियां हैं, फिर सर्व संबंधों से। तो पहले अपने मन को एकाग्र करना है उसके ऊपर में, और विजुलाइज करना है कि उससे शक्तियां आ रही हैं। मन बुद्धि को भटकाना नहीं है, भले आंखें बंद करके 10 मिनट घर में बीच बीच में, क्योंकि मधुबन में भले टाइम मिल रहा है, लेकिन हमें पता कर्म क्षेत्र पर टाइम निकालना कोई मासी का घर नहीं है, टेढ़ी खीर है। चाहे सेंटर में रहते हैं, सेंटर में भी कम बात नहीं है, घर के में रहते हैं वहां भी टाइम निकालना बड़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन टाइम मिलता है फिर भी, लेकिन उस टाइम को हमको सफल करना है। पांच भले 10 मिनट बैठो, 5 मिनट ही बैठो या 2 मिनट ही बैठो, लेकिन 2 मिनट पूरे बाबा के प्यार में लग लेना। 2 मिनट में आंखें बंद करके भगवान को सीधा समा लेना अपनी आंखों में, कि शिव बाबा को हमने अपनी आंखों से पकड़ लिया। स्थूल पर काम करना है, बुद्धि ऊपर नहीं जा रही कोई बात नहीं, वही नीचे आ जाएगा। बाबा ने कहा मुझे पुकारो मैं आ जाऊंगा, 1 सेकंड में आ जाऊंगा, बाबा मदद करो। तो 2 मिनट के लिए बैठ जाना, बाबा को पूरा अपने जोर से अपनी आंखों से पकड़ लेना उसको, कि बाबा की सारी शक्तियां मेरे में आ रही है, वो मेरे लिए ही तो है, और किसके लिए है? वो हमारे लिए तो आया हुआ है, हमको ही सुधारना। संसार अपने आप सुधरता रहेगा, उसको तो वही सुधार रहे जो उस पूरे संसार को चलाने वाले हैं। तो छोटे छोटे प्रयोग करने, तो सबसे पहले बाबा को याद करने के अलग अलग तरीके, मदद करो, भिन्न भिन्न बाबा को यूज करो, बाबा का वरदानी हाथ मेरे पर है, या बाबा मेरे मस्तक में चिपक गया है, मेरे आंखों में है, या बाबा की शक्तियां मैंने हाथ से पकड़ी हुई है, ऐसे स्थूल में काम करने का है। लेकिन क्योंकि हम लोग जो पहले महसूसता चाहते हैं ना, स्थूल पर चाहते हैं सभी, सूक्ष्म तो और बहुत गहरा है, लेकिन स्थूल हमारा सहज हो जाएगा तो सूक्ष्म और अपने आप ही सहज हो जाएगा। तो स्थूल रूप से काम करना, भक्ति में स्थूल में क्यों मजा आता है? क्योंकि पूरा एकाग्र होते हैं, मन बुद्धि को भटकने के चांस नहीं होते। ढोल मजीरा बजा रहे हैं, आरती गा रहे हैं, क्या सुख बैठता है, कितना रस बैठता है उसमें। तो ऐसे भी वो हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं लोप हो रही हैं। भक्ति में भगवान के प्रति कितना प्यार होता है, लेकिन ज्ञान में क्यों नहीं है? क्योंकि भावनाएं हमारी ना, वो भक्ति की, भक्ति वाली भावनाएं कम हो गई हैं। यहां ज्ञान युक्त भावनाएं, लेकिन भावना भक्ति से भी ज्यादा इधर। तो स्थूल रूप से काम करना है, तो पहली शक्ति मिलेगी हमको सर्वशक्ति बाप से अलग अलग तरीके से कनेक्शन जोड़ने से। दूसरी शक्ति मिलेगी स्वयं को आत्मा समझने से, क्योंकि आत्मा स्वयं अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। कल की मुरली में था, जो बच्चे आत्म अभिमानी हैं वही डैश हैं। कौन है जी? शक्तिशाली। और कल के मुरली में ऐसे से मावा की आदर करने, जो बच्चे आत्म अभिमानी या देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं वही डैश हैं। राज्य अधिकारी विशेष आत्मा बोलते जाओ कितने भी। हाँ ये भी है जो आप बोले, ठीक है ये भी, लेकिन कल बाबा ने दूसरी बात बोली, ये भी बाबा बोल देगा आपकी बात सुन के अगली मुरली में। लेकिन कल क्या बोला बाबा ने? कहा वो बच्चे महावीर हैं। आए यार किसको? हाँ तो कितनी बड़ी बात है। तो आत्मवानी स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करनी, बैठे बस बैठ जाओ, मैं आत्मा हूं, मस्तक के अंदर में विराजमान हूं, ये बॉडी से बिल्कुल डिटैच हूं, कोई लेना देना नहीं शरीर से। जैसे इस कमरे की, इस माहौल की महसूसता और इस बॉडी की महसूसता हम सबको अलग अलग हो रही है कि नहीं हो रही है? हम जब चाहे दरवाजे से बाहर चल सकते, जब चाहे अंदर आ सकते हैं। उसी तरह इस बॉडी में भी ऐसे रहना, मैं आत्मा इसमें बैठी हूं, इस देह रूपी घर में, यहां से डिटैच हुई, फिर इसके अंदर आ गई, इसके बाहर गई, अंदर आ गई, बाहर गई, अंदर आ गई। प्रैक्टिस करें इन आउट, इन आउट, इन आउट, ऑफ ऑन, जैसे स्विच ऑफ करते ना, लाइट आई बंद की, लाइट आई बंद की, तो इन आउट अपने शरीर से निकलना, भले ऊपर नहीं जाओ, यहीं प्रैक्टिस करो, यहीं प्रैक्टिस करो। ये शरीर से तो निकलने प्रैक्टिस करें, दरवाजे से बाहर नहीं निकलेंगे तो आगे कैसे जाएंगे? पहले हमको यहां से प्रैक्टिस किया, ये नहीं सीधा यहां से निकल के सीधा परमधाम पहुंच गया। यहां से पहले थोड़ी दूर तक जाओ, फिर वापस आ जाओ, फिर दूर जाओ, फिर वापस आ जाओ। तो शरीर से निकलने की प्रैक्टिस, अर्थात देही अभिमानी बनने की, वो अभिमान हो जाना चाहिए, महसूसता होना चाहिए कि मैं बॉडी से बिल्कुल डिटैच हूं, और ये अंदर की बात ही है। तो दूसरी बात है आत्म अभिमानी अवस्था। और तीसरी शक्ति कैसे मिलेगी? घर को याद करने से। कौन सा घर? परमधाम। तो क्योंकि बाबा ने कई बार कहा घर को भी याद करो। तो घर में क्या, जैसे बाजार में जाते हैं जितना घूम फिर लो, लेकिन शांति कहां मिलती है? घर में मिलती है। दूसरे के घर में जाएंगे वहां भी नहीं मिलेगी, अपना घर कैसा भी हो वहां शांति मिलती है। तो अपने घर में रहने का प्रयास करना है लंबे समय, तो कुछ की प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा सीधा परम धाम में हूं। वहां क्या है, महसूस करो, स्पर्श करो परम धाम को, जैसे आत्मा एक स्टार है और उस घर को स्पर्श कर रही है। जैसे हम घर को स्पर्श कैसे करते हैं, सब चीजों से कैसे प्यार होता है, कितना मोह होता है उससे, अटैचमेंट होती, लगाव होता है, अट्रैक्शन होती है, ऐसे परम धाम से भी हमको अट्रैक्शन होनी चाहिए। ये मेरा घर है और मैं आत्मा यहां बैठी हूं। जैसे सारा मनारा, आज बता रहा बाबा ने बताया ना, मनारा क्या, छत्ता, हाँ वो तो आत्माओं का मनारा जैसे वहां है, और आत्माएं चमक रही है रंग बिरंगी, एकदम चमकीली आत्माएं सोई, और शिव बाबा भी चमक रहा है, और हम सब आत्मे पास पास में सब बैठे हुए, और सारी प्योर आत्माएं हैं, और ये घर कितना शांत है, स्वीट साइलेंस है, इससे जैसी शांति कहां है ही नहीं है। जो मनुष्य ढूंढ रहा है उसका हमको मार्ग मिल गया है, तो उसका अनुभव करना है, तो भी शक्ति मिलेगी, तो भी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। आत्माओं को चाहिए क्या? शक्ति और शांति। तो तीसरी बात किसको याद करना है? घर को याद करना है। चौथी बात की और शक्ति कैसे मिलती है? मुरली से। उससे पहले प्रकृति से। ये जो पांच तत्वों का शरीर है, इसको पांच तत्वों के शरीर को प्रकृति के अनुरूप चलाने से ही ये शक्तिशाली तंदुरुस्त रहेगा। अगर हम पांच तत्वों के नियमों का, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो ये भी शरीर साथ नहीं देता है। इसलिए योग में बैठे भी या जब भी मौका मिले प्रकृति के पांच तत्वों को भी साकार देना जरूरी है, और उन्हीं के अनुरूप हमारा भोजन हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो प्रकृति के तत्व हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, क्योंकि सतयुग से लेकर अंत तक हमारा प्रकृति के साथ साथ रहा है। कितने लंबे समय से हमारी पालना की प्रकृति ने, कितना खाया होगा हमने सतयुग से लेकर अभी तक, कितनी रोटियां खाई होंगी, कितने चावल खाए होंगे, कितने गुलाब जामुन खाए होंगे, क्या क्या खाया होगा बताओ। तो कितनी पालना की है हमारी प्रकृति ने, तो उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। कितने फल खाए होंगे, कितनी पालना की है बचपन से सतयुग से लेकर 5000 साल तक, तो उसको रिटर्न करना है। इसलिए बाबा ने कहा, परसों का स्लोगन था, क्या स्लोगन था, इसी संदर्भ था, डैश वह है जो डैश 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 करते हैं, क्योंकि थोड़ा ही बता दूंगा तो सब बोल देंगे। विश्व कल्याणकारी वह है जो, अब बताओ, जैसे आज था बालक सो मालिक वो है जो, जो भाग्य विधाता बाप को तपस्या के बल से, तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना ले। अच्छा, विश्व कल्याणकारी वो है जो, परसों कल दो दिन दो, हाँ ठीक बोल दे कोई, विश्व कल्याणकारी वो है जो प्रकृति के पांचों तत्वों सहित विश्व की सर्वात्माओं का कल्याण करें। तो प्रकृति के पांचों तत्वों सहित, क्योंकि लंबे हम इससे शरीर से कितना, ये प्रकृति का कितना हमारे उपकार है कि हम इस शरीर के माध्यम से भगवान से मिलन मना रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, इस शरीर को चाबुक भी नहीं लगाना है, अर्थात इसको दुत्कारना भी नहीं है, ये तो बहुत कीमती तोहफा मिला हुआ है, उपहार है, गिफ्ट है, एक भगवान से मिलने का साधन है ये, तो इसका भी हमको बहुत ध्यान रखना है शरीर का। और प्रकृति के पांच तत्वों को रोज सकाश देना है। कैसे सकाश देंगे, पानी को देखना है, पानी में मैं अंदर चला गया एकदम भी नीचे, समुन्द्र के अंदर बैठ गए, वैसे तो बाहर ही बैठेंगे, डर थोड़ा लगेगा कभी, पांचों समुन्द्र के अंदर बैठ गए जाके, है ना, और बैठ गए शंकर की तरह तपस्या, जैसे शंकर बैठते ना ऐसे तपस्वी मूर्त बन के बैठ गए, और मुझसे परमात्म शक्तियों की किरणें फैल रही चारों तरफ, परमात्म शक्तियों की वाइब्रेशन फैल रहे, प्रकंपन फैल रहे हैं, परमात्म शक्तियों की ऊर्जा फैल रही है, शक्ति फैल रही है, निरंतर पानी सारा शुद्धिकरण होता जा रहा है उसका, और पानी का भी धन्यवाद कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं जैसे पानी भी हमारा दोस्त बन गया, मित्र बन गया वो, क्योंकि फिर से पालना लेनी है अपने को, वो फिर उपक्रम फिर से रिपीट होगा। तो पानी का, जल की सेवा करनी है, और धरती की, धरती माँ ने क्या क्या दिया हमको, कितने उपकार हैं उसके, सब कुछ वही है, उसी के ऊपर है, धरती के ऊपर तो है, कितने फल, एक ही मिट्टी में कितने प्रकार के रंग बिरंगे फूल निकलते हैं, एक ही मिट्टी में नमकीन निकल रहा है तो खट्टा भी है तो मीठा भी है, इमली भी है तो दूसरे दूसरे भी है, सब कुछ है, तो धरती के कितने उपकार हैं। तो धरती को रोज धन्यवाद देना है। इसलिए धरती पर चलना माना, बाबा ने कहा ना, चप्पल की आवाज भी नहीं होनी चाहिए थी, मम्मा कैसे चलते हैं, कई बार बाबा एग्जाम्पल देते हैं, तो हमारी चलन भी ऐसी धरती पर जगह जगह, कई बार हम देखा थूक देते हैं जगह जगह, नहीं जहां चीज जो करने की वहीं करना चाहिए, किचड़ा हम डाल रहे हैं, कूड़ा करकट डाल रहे हैं, कहां डालना वहीं डालने का, स्वच्छता अभियान जो भारत में चल रहा है, स्वच्छता अभियान अंदर में भी चलाना है, तो धरती के साथ भी ज्यादा शिष्ट, क्योंकि प्रकृति के साथ हमने बहुत छेड़छाड़ की है, उसको हमने बिगाड़ दिया है, तो धरती हमारी कितनी पालना कर रही है। अग्नि, अग्नि से क्या हो रहा है, ठंडी को भगा रहे हैं, तो अग्नि, अग्नि की कैसे करेंगे सेवा, हाँ जी, शीतलता का वाइब्रेशन तो अग्नि बुझ जाएगी, वो पवित्रता के वाइब्रेशन देने अग्नि को, है ना, सोच लेना मैं अग्नि के अंदर बैठा हुआ हूं, जहां बैठना तो है ही, एक दिन शमशान घाट पर जाके कि नहीं बैठना, तो पहले से उसका अनुभव कर देने का, कई ऐसे अभी संत हैं संसार में अभी भी जो अग्नि पर चलते हैं, अग्नि है, बैठे हैं वो अग्नि पर, लेटे हुए हैं लेकिन उनको टच नहीं कर रही है, साइंटिस्टों ने उसके ऊपर अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, खोज की कि क्या है ये, कोई केमिकल तो नहीं लगाया, लेकिन नहीं लगाया, उन्होंने अग्नि से दोस्ती कर ली है, उनके विचारों को अग्नि ने जैसे एक्सेप्ट कर लिया है, उनसे टच नहीं होती है वो। दूसरे लोग चलते हो जल जाते, वो नहीं जल रहा है, तो कैसे संकल्पों की सिद्धि कर ली है वो, जबकि उनके साथ में तो भगवान की शक्तियां भी नहीं है। पवित्रता की शक्ति है, मनोबल है, एक विश्वास है, निश्चय, दृढ़ निश्चय है, मन के संकल्पों पर पूरा नियंत्रण है उनका। तो अग्नि की भी हमको सेवा करनी है, शुद्ध वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन देने हैं। और आकाश, आकाश की कैसे सेवा करेंगे, फरिश्ता बनकर, जैसे आकाश सतर्श, सबकी सतर्श है, वाइब्रेशन देने आकाश को, फरिश्ता बनकर उस पर, जैसे हम पुष्पक विमान में चल रहे हैं, एकदम पारदर्शी विमान है, उसमें हम सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सबको बिठा के ले जाने का क्या फर्क पड़ता है, अकेले के जाना है, मल्टी एकदम इतनी सेवा हो जाएगी इकट्ठी, हम सबको ले जाएंगे, कितनी दुआएं मिलेंगी। जैसे मान लो हम घूमने अकेले जा रहे हैं और एक है, हम आप सबको साथ लेके जा रहे हैं, तो कितनी दुआएं मिलेंगी। तो जब भी सूक्ष्म सेवा करते ना, बड़ा सा प्लेन बना लेना एक, और देखना हम पायलट हैं और सब पीछे बैठे हुए हैं, दूसरों को पायलट बनने का मौका दे देना, पीछे बैठे हैं और सब उड़ रहे हैं, सबके अंदर से प्योरिटी के वाइब्रेशन निकल रहे हैं, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद पूरे आकाश में समाते जा रहे हैं वो। और कौन सा रहेगा पांचवा तत्व, वायु। तो वायु की सेवा कैसे करेंगे, शीतलता, वायु तो वैसे शीतल है, जो भी हवा हमको स्पर्श करती जा रही है वो भी प्योर शुद्ध होती जा रही है। तो ऐसे पांच तत्वों की, तो ये चौथी बात थी कि प्रकृति के पांचों तत्वों से भी शक्ति लेने की अनुभूति करनी है। हर समय सोचना कि प्रकृति के पांचों तत्व मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। पेड़ पौधे लगाने बहुत अच्छी बात है, पेड़ लगाना, पेड़ों को पानी देना, पालना करना उनकी, तो पर्यावरण संरक्षण जो करते हैं, है ना, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे मन की संवेदनाओं को, मन के विचारों को जल्दी कैच करते हैं। कई साइंटिस्टों ने ऐसे प्रयोग किए हैं, एक पौधे के आगे गीत बजाते हैं तो पौधा हरा भरा रहता है, और एक पौधे के आगे गाली देते हैं तो मुरझा जाता है। ऐसे पानी के ऊपर भी प्रयोग किया हुआ है। तो हमारे हर संकल्प से प्रकृति का तत्व प्रभावित होता है, न केवल प्रकृति का तत्व बल्कि आत्माएं भी। तो ये थी चौथी बात शक्ति लेने की। पांचवी बात श्रीमत पर, जो भाई जी ने बताया सोमान की सीट पर, जैसे राजा जब तक सीट के ऊपर बैठा था तो वो शक्तियों का अधिकार उसके पास में होता है। जैसे राजा उतरा या मिनिस्टर उससे उतरता, कोई मानता उसको, कोई भी नहीं मानता, बाद में चपड़ासी भी नहीं उसको सैल्यूट मारेगा। तो हमें हमेशा सुमान की सीट पर सेट रहना है और सुमान का चिंतन करना है, केवल उस लफ्ज को पकड़ के नहीं बैठ जाना, उसके बारे में चिंतन करना है, क्यों भगवान ने मुझे महान आत्मा का टाइटल दिया है, कौन कौन सी महानताएं मेरे में है, भगवान ने इतनी ऊंची दृष्टि से कैसे देख लिया कि मेरे अंदर में इतनी सारी विशेषताएं हैं, कैसे उसने चुन लिया। जरूर हमारे अंदर ऐसी तो विशेष विशेषताएं हैं ना, जिन विशेषताओं के कारण भगवान ने हमको इस यज्ञ में लगा दिया, नई दुनिया की स्थापनार्थ चुन लिया हमको, तो उसकी विशेष विशेषताएं हैं ना, तभी तो चुना ना। तो जो सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, अपसेट नहीं होते, माया उनसे अपसेट हो जाएगी, नहीं तो माया भी अपने दांव पे अलग अलग तरीके से करेगी, लुभावने रूप से, नए नए रूप से, जैसे 100 रूप से तो हमने माया को जीत ले लेकिन 101 रूप से नए रूप से आएगी वो, पता नहीं चलेगा उसका, मन मत मिक्स कर देंगे। आज बाबा ने बोला ना, ईश्वरीय मत में मन मत मिक्स कर देते हैं, परखने की शक्ति खत्म हो जाती है, कैचिंग पावर, टचिंग पावर खत्म हो जाती है। तो जितनी हमारी बुद्धि शार्प होगी, प्योर होगी, क्योर होगी, तो स्वतः ही हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा। तो सुमान की सीट पर सेट रहेंगे तो किसी प्रकार के भी से भी हम अपसेट नहीं होंगे। तो ये थी पांचवी बात। छठी बात भोजन, स्थूल भी सूक्ष्म भी, एक है संकल्पों का भोजन, कौन कौन से, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहर के समान है। जैसे बताया ना ब्रह्मा भोजन, तो ब्रह्मा भोजन ही है, अगर हम उसको यथार्थ क्वांटिटी में करें लेंगे, तो अगर उससे ज्यादा सेवन करेंगे तो वही ब्रह्मा भोजन हमें बीमार कर देगा। तो स्थूल में भी भोजन हमको उतना ही करना है ताकि बॉडी ठीक ठाक रहे, मोटापे से थोड़ा कम कर सकते, सब अपने हाथ में ही है। और हंस रहे कौन, हंस रहे अच्छा है, बोलते कोई को बोलते है, तुम्हारी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। तो भोजन एक तो शुद्ध संकल्पों का भोजन, क्योंकि संकल्प हमारी बुद्धि का भोजन है। पवित्र संकल्प हमारी बुद्धि का भोजन है, पवित्र दृष्टि हमारी आंखों की रोशनी है, पवित्र कर्म ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है ना। तो ये छठी बात थी, कौन सी थी ये छठी बात? भोजन, स्थूल सूक्ष्म दोनों। और सातवीं बात नींद, नींद भी अच्छी करनी है। हाँ नींद के ऊपर तो माता जी खुश हो गए। संसार तो इसके लिए तरसता है, और ब्राह्मणों को नींद जल्दी आई थी। कैसे? अगर नींद ना आए तो योग में बैठ जाओ, सबसे सहज काम। इसलिए बाबा ने बोला ना, रात को नींद करते करते योग में चले जाओ, योग निद्रा हो जाएगी। वो निद्रा योग नहीं, योग निद्रा। हाँ यहाँ आके नहीं सोना, फिर वहीं सोनेगा, है ना। वही ना, एक माता जी कोर्स कराने आई, बोला मेरे बच्चे को बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो वो टीचर बोला कोई बात नहीं, कल लेके आ जाना तुम। तो टीचर जो बच्चे को, माता जी बच्चे को लेके आई, तो आते वो वहां जाके सो गया। माता जी बड़ी खुश होगी, माता जी तो कोर्स समझ में नहीं आया, बच्चे के लिए वो खुश होगी कि मेरा बच्चा तो कम से कम उसकी नींद तो आ गई उसको। तो राजयोग नींद भी सिखाता है, अच्छी नींद। लेकिन ये है कि इस नींद में हमारे संकल्प जो परिवर्तन होते हैं, हमारे स्वप्न शुद्ध हो जाते हैं, और स्वप्न हमारे इतने प्योर शुद्ध हो जाएंगे कि स्वप्न भी हमारे योग निद्रा में तब्दील हो जाएंगे, जो बाबा ने संडे की मूल्य में कहा था, है ना। तो छठी सातवीं चीज कौन सी होगी? नींद। और आठवीं चीज स्नेह की शक्ति, बाबा के प्यार में स्नेह में खो जाना। स्नेह में बहुत बड़ी शक्ति है, देखना है कौन कौन से बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, क्या क्या हमको प्राप्ति हुई है, कितना हम समस्याओं से घिरे हुए थे, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था और भगवान ने आगे हमको पकड़ लिया, चारों तरफ से घिरे हुए थे, कभी सोचा नहीं था मन में नहीं कि इतने सारी परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम पहुंच जाएंगे यहां पर। सबको परिस्थितियां आई होंगी ना, घर में कितनी परिस्थितियां आती हैं, ढेर सारी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन और परिस्थितियों से निकलने की शक्ति किसने दी? हम खुद ही अपना बताते हैं शॉर्ट सा, हम पिताजी से बहुत डरते थे, बहुत ही डरते थे, कभी भी पिताजी के सामने हम बराबर नहीं बैठे, खटिया पर नीचे बैठने का। और हमारे पिताजी तो इतने शांत स्वभाव के थे, समझो कि हमारे जो भाइयों की मिसिज थी ना, उनको भी मिसिज के सामने भाइयों की पिटाई कर देते थे। पुराने जमाने के तो, लेकिन पुराने जमाने के लोग बहुत नियमों के पक्के होते थे, अपने बच्चों को बिगड़ने नहीं देते थे बिल्कुल भी। मार अगर स्कूल में मार पड़ेगी ना बच्चे को, और घर में आके बताया तो घर में और मार पड़ेगी, इसलिए बताते नहीं थे घर में आके। और दूसरे बच्चों को कह देते कि बताना नहीं, घर में जाके मार पड़िए। तो पहले के स्वभाव संस्कार और सभ्यता थी, आज की डेट में देखो तो कितना फर्क पड़ गया है। लेकिन आज की डेट के अनुसार भी उन बच्चों को कहना नहीं है कुछ भी, क्योंकि सबका पार्ट अपना अपना है। हम ये ना सोचे कि हमारे अनुसार ही चले, वो भी अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर साथ में चल रहे हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। अभी तो बच्चे अपने हिसाब से हमको चलाना चाहते हैं आज की डेट में, ऐसा है। लेकिन हाँ, बच्चों का कहना मानना पड़ता है, अगर कई बार बच्चों का कहना नहीं माना तो बच्चे अपने आप हो जाते हैं, ये हालत हो, क्योंकि आत्माओं के अंदर शक्ति नहीं है। बाबा ने खुद कहा हुआ कि अंत में ऐसी आत्माएं आएंगी जिनको आपको अपनी शक्ति से चलाना पड़ेगा। तो बच्चों के मन को समझना है, बाल मन पर जो बीज हम बोएंगे वो ही बीज धीरे धीरे काम करेंगे, बड़े प्यार से चलाने की बात है, क्योंकि स्नेह का अकाल पड़ा हुआ है सभी को। और अभी तो हाईटेक टेक्नोलॉजी है, उससे छुड़ाना बड़ा मुश्किल है उनको। लेकिन पहले माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप से तो बच्चे से नहीं। आजकल के कुछ माँ बाप भी हाईटेक हो गए हैं। हमने कुछ दिन पहले यहां देखा तो यहां से एक गाड़ी गुजर रही थी, तो हमसे पूछा नक्की लेकर रास्ता किधर है, तो हमने बताया इधर ही है। तो सामने युगली बैठे हुए थे, बच्चे पीछे बैठे थे, तो जो माता जी ना इतनी लंबी सिगरेट ऐसे, और जैसे हमारी दृष्टि नीचे कर ली उसने, तो मना हम बच्चों के सामने हम ये करें तो बच्चे कैसे कहेंगे? तो हमारे पर डिपेंड करता है, हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्ञान को अमल मिला वो अपने आप लाएगा, वो हमारे अंदर शक्तियां आएंगी सारी। बच्चा कुछ ही बोले, अपने आप को अपनी सीट से उतरना नहीं है, हमें अपने सम्मान में स्थित रहना है। हमारे साथ कौन है? स्वयं सुप्रीम सोल है, सर्वशक्तिवान बाप है। तो उसकी शक्तियों की बरसात निरंतर हमारे पर होती रहती है। वो हमारे से जुदा नहीं होता, हम उससे जुदा हो जाते हैं। कौन माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा मेरी आंखों से ओझल रहे? चाहता कोई ऐसे? कोई नहीं चाहता है। तो भगवान क्यों चाहेगा मेरा बच्चा मेरी आंखों से ओझल रहे? हम उससे ओझल हो जाते हैं। तो कौन सी बात बता रहे थे भगवान से शक्ति लेने की? स्नेह की शक्ति। स्नेह में बहुत शक्ति है। और कितनी बातें होगी ये? आठ। फिर नेक्स्ट है मौन। मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। जो भी हम बिना अर्थ के कुछ बोलते रहते हैं या किसी का चिंतन करते रहते हैं, पता हमको ये हमारे कहने से कोई बदलने वाला नहीं है, पता हमको, फिर भी हम बोलते रहते हैं, तो हम अपनी शक्ति जैसे क्षीण करते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं। तो वही शक्ति हमको संग्रह करके रखनी है मौन रहने का। मौन में बहुत सुख है। इसलिए कहता है स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन, और डायमंड क्या है? कंट्रोल स्पीच इज डायमंड। तो जितना जहां बोलना वहां हमको बोलना है। कभी कभी हमको ऐसा भी लगता है, कभी कभी अपनी विशेषताओं को भी थोड़ा दबाना पड़ता है, नहीं तो हमारी विशेषताओं को उल्टा अर्थ भी ले लेते हैं लोग। तो भी सोच समझ के हमको कहां क्या करना है, भी सोच समझ के थोड़ा करना चाहिए। तो ये था मौन की शक्ति। नेक्स्ट है संगठन का बल, संगठन की शक्ति। इससे भी आत्मा में शक्ति भरेगी। जब भी योग करते हैं, जैसे मधुबन में आए, तो संगठन के योग को कभी मिस नहीं करना। जो भी सवेरे शाम का टाइम होता है, अमृत वेले का, इवनिंग का योग, संगठन में बैठ के योग करना है। क्योंकि कोई भी अगर थोड़ा भी कमजोरी होगी ना, वो कमजोरी हमारी भस्म हो जाएगी। वहीं पता नहीं हमारे पास में कौन सी आत्मा बैठी है जिसके वाइब्रेशन में इतनी ताकत है, इतना बल है, जिसका हमको पता नहीं है। भले वो कोई साधारण भाई भी हो, साधारण माता भी हो सकती है, जो देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन उसके अंदर जो प्योरिटी का बल है वो हमको पता थोड़ा नहीं है। सबके अंदर क्या क्या पता थोड़ा नहीं है। तो सबके अंदर विशेष बल भरा होता है। तो संगठन में बहुत बड़ा बल है। संगठन में बैठ के हमारी सुरक्षा है। माया कुछ कर नहीं सकती, प्रवेश नहीं कर सकती। हमारे कई विक्रम उस आत्मा के कारण ही, हमारे कई विक्रमों से हम करने से बच जाएंगे। भले विनाश नहीं होंगे, लेकिन कुछ विक्रमों को करने से हम बच जाएंगे। तो संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। तो कितनी बातें होगी? दस। तो ये बहुत सारी बातें और भी, तो कौन कौन सी थी बातें? दस ये। सबसे पहली बात, किससे शक्ति लेनी है? परमात्मा से शक्ति लेनी है। दूसरी बात, आत्मा स्वयं शक्तिशाली है, आत्मा में स्थित हो जाना एक बहुत शक्ति, क्योंकि संतान किसकी है? सुप्रीम अथॉरिटी की है, सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी की है। उस रूप में हम स्थित होंगे तो आत्मा स्वयं में शक्तिशाली महसूस करेगी अपने आप को। और तीसरी बात, परमांड ब्रह्मांड की परम धाम, साइलेंस, स्वीट साइलेंस, वहां स्थित हो जाना, वहां अपने घर में जाके सो जाने का। बाबा ने बताया ना, ये थक जाओ तो हाँ सोने का पॉइंट पक्का है एकदम। मां की गोद में सो जाएगी। वैसे भी अगर कोई टेंशन वेंशन ना, सो जाने का, टेंशन लेनी। ब्राह्मण जीवन बना टेंशन फ्री जीवन। कई बार प्रसाद का भी टेंशन कर लेते हैं, भाई अपनी तरफ से हम पूरा जोर लगा रहे हैं, नहीं हो तो क्या करें, सो जाओ, बात खत्म है, और रिफ्रेश हो जाएंगे ना। रिफ्रेश होकर फिर उठ के करो अच्छी तरह से, लेकिन डेली डेली नहीं करना, आदत पड़ जाएगी, वो कभी कभी कर लेना। ऐसा नहीं अमृत वेले भी ऐसे डेली कर ले, नहीं, जो नियम है उनको पक्का करना थोड़ा। जैसे सेना में कितने नियम पक्के होते हैं, तो रूहानी सेना है, इसके नियम तो और ही पक्के हैं। संसार में तो देखो दूसरे धर्मों में कितनी साधना करनी पड़ती है, कितने पैदल चलते हैं वो, कितने सुखों का त्याग कर देते हैं, कितना त्याग समाया उनमें, धन दौलत, धनी लोग ऐसे तो एकदम समर्पित हैं। जैन धर्म में क्या है फिर? यहां तो है ही नहीं कुछ भी। हम सोचते हैं ऐसे त्याग तपस्या होनी चाहिए तो फिर थोड़ा ठीक रहता, तो हम लोग कंट्रोल में रहते थोड़े, सहज काम है ना, इसलिए थोड़े ढीले हो जाते हैं। हाँ, तपस्या होती है तो अपने घर में रहना। और चौथी बात, प्रकृति का भी पूरा यूज करना, उसका सहयोग लेना, सहयोग देना भी है, तो भी शक्तिशाली रहेंगे। नेक्स्ट, भोजन, स्थूल और सूक्ष्म भोजन दोनों कैसे हों वो भी हमको देखना है। नेक्स्ट, हाँ जी, श्रीमत पर चलना, संकल्प शक्ति, स्नेह की बाद में, सोमान की सीट पर सेट रहना। सोमान की सीट पर सेट रहेंगे तो सारी परिस्थितियां नीचे दब जाएंगी। हम क्या परिस्थितियों को पकड़ के, परिस्थिति तो आएंगी आएंगी। जैसे कोई भी अगर छोटी मोटी बात आ गई, समझ लो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और घर में छोटी मोटी बात आती है, तो क्या हम बिजनेस को छोड़ के वहां बैठेंगे? घर कैसे बिजनेस के पीछे भागते हैं? और ये हमारी कितनी बड़ी कमाई है, पूरे कल्प के लिए कमाई है। तो छोटी छोटी बातों को पकड़ छोड़ देने की, वो तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, क्या करना है, वो तो चलती रहेंगी। थोड़ा सा दर्द हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा यहां दर्द हुआ ना, इसको पकड़ के हम बैठ गए तो सारा तो सिर, बाकी तो ठीक ठाक ही है ना, उससे काम ले। हम छोटी छोटी बातें के पीछे बैठ नहीं जाना, छोटी छोटी बातें हमारा वो कितना टाइम खा लेती हैं। थोड़ा सा अमृत वेले अगर कुछ थोड़ा सा भी दर्द है छोड़ देते आज, नहीं,
उठ के आ जाने का। अगर आके योग नहीं भी लगता ना तो भी मार्क्स पूरे जमा हो जाएंगे, क्योंकि हमने छोड़ दिया उधर को। हमारी संकल्प शक्ति में दृढ़ता आएगी, एकदम पावर बढ़ेगी, विल पावर जमा होगी, हमारी आदतें नई आदतों का निर्माण होगा, संस्कार पक्के होते जाएंगे। तो कौन सी बात बताई अभी? सोमान की सीट पर हमेशा सेट रहने का। अगली बात, मौन, स्नेह की शक्ति और मौन, और लास्ट संगठन की शक्ति। तो ये 10 बातें थी, 10 के बाद फिर बस ओम शांति। अब प्रेम से बस दो घड़ी माना 24 घंटे, दो घड़ी याद करना प्रेम से बाबा को, कितने 24 घंटे। ओम शांति।